ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब कोई यज्ञ रचते हैं तो यज्ञ में स्वाहा 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 करके आहुति डालते रहते हैं। जब तक वो यज्ञ चलता है आहुति डालते रहते हैं, स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। जब वो यज्ञ पूरा होने को आता है, जिसको कह सकते हैं कि संपन्न होने को आता है, तो उस समय जो भी आहुति बची हुई होती है उस सारी को स्वाहा कर देते हैं और यज्ञ समाप्त हो जाता है। जो लास्ट वाली अंतिम आहुति है वो ही यज्ञ को संपन्न करने के निमित्त बनती है। अब ये तो हम सब प्यारे बाबा के अति प्यारे ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि वो यज्ञ तो द्वापर युग से रचे जाते हैं। जब भी कोई ना कोई विघ्न व्याधि आता है यज्ञ रचते हैं, बरसात नहीं हुई तो यज्ञ रचते हैं, अति बरसात हो गई तो उसको रोकने के लिए यज्ञ रचते हैं, किसी भी विघ्न को दूर करने के लिए यज्ञ रचते हैं। और उस यज्ञ में ब्राह्मण ही होते हैं जो यज्ञ को रचते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा ही यज्ञ संचालित किया जाता है और वो आहुति देते जाते हैं देते जाते हैं, आखिर अंतिम आहुति के बाद समाप्त किया जाता है। और उस यज्ञ की लिमिटेड पीरियड होता है, सीमित समय होता है जिसके अंदर उसको संपन्न होना होता है। और अनेक प्रकार के यज्ञ रचे जाते हैं, अब भी चल रहे हैं। अब बाबा कहते हैं कि ये कौन से एक ऐसे महायज्ञ की यादगार है कि बाकी यज्ञ जो बाद में चलते हैं वो एक महायज्ञ के स्मृति स्मारक हैं जो कभी परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ, या पूरा नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, संगम युग पर रचा था और हर कल्प के संगम पर फिर रचते हैं फिर रचते हैं, अब भी रचा हुआ है। भगवद गीता जो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि ग्रंथ है उसमें भी लिखा हुआ स्पष्ट कि कल्पों की आद में अर्थात हर कल्प के आद में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे ब्राह्मण उत्पन्न हुए, देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। अर्थात वह यज्ञ मनुष्य को देवता, नर को श्री नारायण, नारी को श्री लक्ष्मी बनाने वाला यज्ञ है। अब उस यज्ञ से क्या निकला तो आप देखेंगे कि यज्ञ जब रचते हैं तो ब्राह्मण ही होते हैं और दूसरे किसी को अलाउड नहीं है कि वो आके यज्ञ में आहुति डाले। और ब्राह्मण जब स्वाहा स्वाहा करते हैं तो साथ मंत्र भी पढ़ते हैं, बिना मंत्र पढ़े हुए वो स्वाहा नहीं करते। तो हमको पता है कि महायज्ञ के लिए महाआहुति डालने के लिए बाबा ने हमको महामंत्र भी दिया हुआ है। वो कौन सा महामंत्र है सब ब्राह्मणों को पता है, वो कौन सा महामंत्र है? मन मना भव। तो मन मना भव होने से ही अग्नि प्रज्वलित होती है जिससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं। और ये यज्ञ पूरा कब होता है कि जब सारी दुनिया की प्राणी दुनिया की सारी प्राणी वस्तुओं की आहुति पड़ जाती है, विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है ऐसे यज्ञ से, उसके बाद प्राणा सब कुछ स्वाहा हो जाता है, तब ये यज्ञ संपन्न होता है। अब बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया के स्वाहा होने से पहले जो यज्ञ रचने वाले सच्चे ब्राह्मण हैं, यानी हम और आप हैं, जो सचमुच इस यज्ञ को बाबा के रचे हुए यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, उनको क्या स्वाहा करना और उनकी अंतिम आहुति कौन सी है, क्योंकि ये यज्ञ भी अब समाप्ति की ओर अग्रसर है, बहुत शीघ्र ही समाप्ति होने वाली है। और समाप्ति का आधार है संपूर्णता और संपन्नता ब्राह्मणों की, क्योंकि जो ब्राह्मण और देवता उत्पन्न होते हैं, देवताओं की जो क्वालिफिकेशन है, जो उनकी योग्यताएं हैं, उसमें यही आता है सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण अहिंसक। तो संपन्नता और संपूर्णता ही यज्ञ की समाप्ति का आधार है। अब हमको ये देखना है कि हम ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण मिलके इस विशाल बेहद के महायज्ञ को रचे हुए हैं और हम अपनी आहुति भी देते आए हैं, क्योंकि आहुति से यज्ञ की ज्वाला प्रज्वलित रहती है। अब अंतिम आहुति हमको कौन सी देनी है ताकि फाइनल स्वाहा हो जाए और उसके बाद हमारा जो यज्ञ का, भगवान ने यज्ञ को रचने का लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। लक्ष्य क्या है? पुराना तमोगुणी पतित कलयुगी दुखदायी सब स्वाहा, और नया सतोगुणी सतयुगी सुखदायी सब स्थापित। अब हमको देखना है कि कौन कौन सी प्राणी चीज, ऐसी प्राणी वस्तुएं हमारे पास कौन कौन सी हैं जिनकी हमने थोड़ी थोड़ी आहुति तो देते आए हैं इंस्टॉलमेंट में, लेकिन अब इंस्टॉलमेंट, फाइनल इंस्टॉलमेंट देके हमने उसको संपन्न करना है। हम सब जानते हैं कि हमें पुरानी चीजों की ही आहुति देनी है, नई की नहीं देनी है, और विनाशी चीजों की आहुति देनी है। वो वस्तुएं जो असल में हमारी नहीं है, इधर उधर से हमारे पास आ गई है। जैसे हम कहते हैं कोई मैली चीज है, कोई धूल है, कोई गंदगी है, वो स्वच्छ व्यक्ति की वस्तु तो नहीं है ना। आप सफेद वस्त्र, उजला वस्त्र सुबह पहनते हैं, ओरिजिनल तो सुबह साफ वस्त्र होता है, लेकिन सारा दिन में सुबह दोपहर शाम रात्रि चलते चलते उसमें जो मैल चढ़ जाती है वो तो असली नहीं है ना, इसलिए हम उसकी धुलाई करते हैं। तो इसलिए अब हम इस बात पर मनन चिंतन करते हैं आपस में कि प्यारे बाबा ने हमको कौन कौन सी ऐसी सामग्री दी हुई है जिसको हम कहते हैं स्वाहा करना है और फाइनली स्वाहा करना है। अब आप देखेंगे कि तीन चीजें की सामग्री होती है जो दुनिया में यज्ञ रचते हैं, उसमें तिल होता है, घृत होता है और जौ होता है। तो बाबा कहते हैं आपके वो तीन वस्तुएं कौन सी हैं, मन, वाणी और कर्म, या फिर हम स्थूल रूप में कहते हैं तन, मन और धन, इसको हम स्वाहा करते हैं। तो आपने देखना कि पुराने को कौन कौन सा पुराना बचा हुआ है सामग्री की थाली में जिसको हमने फाइनल स्वाहा करना है। तो पहली बात क्या आती है, जो हमको तंग करने वाली वस्तु है उससे छुटकारा पाना है। तो पहली वस्तु है जिसको हम कहते हैं, अब आप गौर से नोट करना अपने मन की डायरी में, जिसको हम कहते हैं पुराने स्वभाव संस्कार। हमको क्या तंग करता है जिसको हमें स्वाहा कर देना है, पुराने स्वभाव संस्कार। और उसके बदले में जब हम उसको निकाल देंगे तो धारण क्या होगा, नए स्वभाव संस्कार। आसुरी विकारी स्वभाव संस्कार को स्वाहा करना है और दैवी निर्विकारी संपूर्ण निर्विकारी हमारी डिग्री है उस स्वभाव संस्कार को धारण करना है। ठीक है, तो पहली स्वाहा करने वाली सामग्री कौन सी है, छुटकारा पाने वाली, जिससे हम खुद ही तंग हैं। और हर ब्राह्मण यही कोशिश कर रहा है कि मेरे पुराने स्वभाव संस्कार से मैं छूटू, मैं तंग हूं, क्योंकि वो दुख देता आया है, द्वापर से हमको दुख देता आया। अच्छा, एक तो बात हो गई पुराने स्वभाव संस्कार। दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जिसने हमको यहाँ पिंजरे में आत्मा रूपी पंछी को कैद करके रखा हुआ है, और वो है देह भान पर आधारित नाम, मान और शान। बाबा कहते आत्मा के तो नाम, मान, शान अलग है, लेकिन देह भान पर आधारित नाम, मान और शान क्या मतलब हुआ, कि हम मैं करके और शरीर से संबंधित जिसको कहते हैं पद, पोजीशन, मान की भिखारी बनना कि कुछ मिल जाए, हम ये भी कह देते हैं हमने ये त्याग किया, कुछ तो हमारा वैल्यू होना चाहिए। सब जानते हैं कि नाम, मान और शान क्या होता है। तो दूसरी बात क्या हो गई, नाम, मान और शान की आहुति देनी है। पहला था पुराने स्वभाव संस्कार की आहुति देनी है, और तीसरा वो बड़ी एक सूक्ष्म सी चीज है इसलिए उसको हमें नोट कर लेना चाहिए। तीसरा क्या है कि हमें अवगुण देखने वाली बुद्धि की आहुति देनी है, दूसरों के अवगुण देखने वाली बुद्धि की आहुति देनी है। तीन हो गई, स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा। और आगे चलो तो हमें साधनों के आकर्षण, इस पुरानी दुनिया के पुराने रावण की लंका के झूठे सोने की तरह चमकने वाले, धोखा देने वाले और अल्पकालिक साधनों को स्वाहा करके अपनी साधना को शक्तिशाली बनाना है। तो ये क्या हो गया नंबर चार। और आगे सोचिए तो बाबा ने हमको कहा है कि बच्चे तुम्हारा एक ही लक्ष्य है और वो क्या है, प्रभु पसंद और लोक पसंद। अभी बहन जी कह रही थी कि भाई जी दिल्ली में रहते हैं, वहां पर लोकसभा है और राज्यसभा है, तो बाबा कहते हैं हमको लोकसभा नहीं लोक पसंद सभा बनानी है कि हम लोक पसंद हो और दूसरी राज्यसभा है तो हमको राजयोगी सभा बनानी है। तो इसलिए हमको साधना पर जोर देना है और विश्व पसंद बनेंगे तो परमात्मा के पसंद आप ही बनेंगे, बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं उसकी बजाय अगर बच्चे अपने अंदर गौर से देखें तो हम क्या बने हुए हैं, जो ब्रह्मा बाबा नहीं थे और हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, और बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के समान बनो, तो हम बन गए हैं ब्रह्मा बाबा के लिए। हम कहते हैं बाबा अथक सेवाधारी दधीचि ऋषि, रात को जाग जाग के आवाहन करने वाले नई दुनिया का आत्माओं का हम बन गए हैं आराम पसंद। तो आराम पसंद का हमको स्वाहा करना है कि अरे युद्ध के मैदान में कोई सैनिक या योद्धा सो जाए, उसको उबासी आ जाए या ऊँगने लग जाए तो क्या होगा, उसकी कोई ड्यूटी दी गई है कि तूने ये चौकी संभालनी है और वो सोया हुआ पाया जाए, तो रोज हम गाते हैं अमृत वेले गाते हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो वो जो अंदर की आलस्य की निंद्रा है वो आराम पसंद के बहुत सारे तकिए हम लगा के आराम से सो जाते हैं। तो आराम हराम है कहा जाता है, इसलिए कहते हैं जब तक जो शक्तिशाली शूरवीर होते क्या कहते हैं, जब तक मुझे विजय प्राप्त नहीं होगी मैं सोऊंगा नहीं। तो इसलिए हमारे आराम पसंद के तकिए क्या हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तकिए सब जानते हैं, कईयों से मैं अच्छा हूं, अपने आप को देखते तो नीचे की तरफ देखते हैं पर चिंतन करते हैं मैं तो कईयों से अच्छा हूं, तो ये तकिया हो गया कौन बना है, अभी तो समय पड़ा है। तो बाबा ने अनेक प्रकार के अपने को बचाने के बहाने कि हमारी आहुति फाइनल ना हो उसमें रखे हुए हैं। तो फिर क्या हो गया, आराम पसंद के तकिए को हमने छोड़ना है। रिवाइज कर लो, पुराने स्वभाव संस्कार को छोड़ना है, नाम मान शान की इच्छा को छोड़ना है, अवगुण देखने वाली बुद्धि का स्वाहा करना है और आराम तलबी के आराम पसंदी के तकिए को छोड़कर विश्व पसंद अर्थात लोक पसंद और बाबा पसंद बनने के लिए जुट जाना है। अब फिर बाबा कहते फाइनल इसका सब चीज का भाव अर्थ क्या निकला, जो सतयुग में हमारी स्टेज है और जो कलयुग में हमारी स्टेज है उसके फर्क को दूर करना है, जिसको हम कहेंगे एक शब्द में कि जीवन मुक्त बनना है। जीवन में जितने भी प्रकार के विघ्न और बंधन हैं उसको छोड़ करके जीवन मुक्त बनना है। अगर हम ब्राह्मण अपने जीवन को देखें तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज है जो मुझे बांधती है, जो मुझे खींचती है, जो मुझे डबल लाइट का अनुभव करने से नीचे ले आती है, हर एक को पता है। तो उसको छोड़ करके जीवन मुक्त बनना है, डबल लाइट बनना है। तो बाबा कहते हैं कि इस जीवन मुक्ति का अर्थ क्या होता है कि हम अपने जीवन को स्वतंत्र होकर अपनी मर्जी से जैसे चलाना चाहे चलाएं, उसके रास्ते में कोई विघ्न ना आए, किसी भी प्रकार की रुकावट, किसी भी प्रकार का विघ्न, किसी भी प्रकार का खेंच या बंधन या बोझ हमारे अंदर ना हो। तो सतयुग की हमारा टाइटल ही है जीवन मुक्त, और कलयुग वालों का टाइटल है जीवन बंद, और संगम वालों का क्या टाइटल है? संगम वालों का टाइटल तो देवताओं से भी ऊंचा है, अर्थात ईश्वरीय संतान, डायमंड, हीरे तुल्य जीवन। तो हीरे तुल्य जीवन में बंधन और मुक्ति से तो ऊपर का जीवन है। तो हमारा क्या जीवन है कि इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर, इंद्रिय जीत होकर अति इंद्रिय सुख में रहना और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करना। अच्छा, अब बाबा कहते हैं ये तो हमारे को स्व आहुति देनी है। आहुति देने के लिए कोई अट्रैक्शन चाहिए, कोई भीति चाहिए, किसी प्रकार का, इस प्रकार की लॉटरी चाहिए जिसको देखकर व्यक्ति आसानी से आहुति दे दे। तो उसके लिए बाबा ने बताया हुआ है इच्छा मात्रम अविद्या। कहा जाता है कि देवताओं की दुनिया में देवताओं को सारा टाइम सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक इच्छा होती ही नहीं। आप सोचते हैं हमें तो अनेक हजारों इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, एक इच्छा पूरी करते हैं दूसरी शुरू हो जाती है। अगर किसी इच्छा को छोड़ते हैं तो टेम्परेरी छूट जाती है। मान लो किसी को मिठाई खाने का शौक है तो वो सोचते हैं अच्छा इसको छोड़ना है, आज जी भर के मिठाई खा लो ताकि फिर इसकी कभी इच्छा ही पैदा ना हो। तो सचमुच आप जी भर के मिठाई खा लें तो फिर कोई कहे और खाओगे, आप कहें नहीं अब मेरी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन कितने दिन, कितने दिन, कुछ समय के बाद फिर वो इच्छा पैदा हो जाती है, क्योंकि आपने इच्छा पूरी करने के तरीका जो अपनाया वो दूसरा था। ज्यादा मिठाई खाने से तो मिठाई खाने के संस्कार और पक्के होंगे या कम होंगे? तो मम्मा हमेशा कहती थी कि ये गलत तरीका है छोड़ने का कि आप किसी चीज को एक बारी टू मच कर लें, एक्चुअली आप उसके संस्कारों को पक्का कर रहे हैं। इसी प्रकार से परंतु सतयुग में इच्छा नहीं होती, इसका सबूत क्या है और इसका कारण क्या है? आप देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई चीज भरपूर मात्रा में होती है तो उसकी वो चिंता नहीं करता। मान लो कोई कह दे कि जयपुर के अंदर कल पानी नहीं आएगा, गवर्नमेंट ने, म्यूनिसपैलिटी ने पहले से अनाउंस कर दिया है कि कल का दिन जयपुर में पानी नहीं आएगा, या आपका जो भी आपका नगर है, तो आप क्या करेंगे? उस ज्ञान का फायदा लेकर के आप अपने घर के सारे बर्तन पानी से भर लेंगे, बाल्टी तो क्या, पतीला तो क्या, कटोरियां भी भर लेंगे कि भाई कम से कम मेरे घर में तो पानी रहे। कारण क्या कि पानी नहीं आना कल। और मान लो सुबह सुबह अखबार में आ जाए, अनाउंसमेंट हो जाए कि नहीं नहीं आज वो बात नहीं, आज पानी आएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे फालतू भरा हुआ, इसको बहा दो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां किसी चीज की कमी होती है या कमी का अंदेशा या खतरा होता है वो व्यक्ति उस चीज को पूरी करने की इच्छा रखता है। जैसे खड्डा पड़ा हुआ हो और आप उससे पानी बहाएं, तो पानी खड्डा को पहले भरेगा फिर आगे जाएगा। किसी भी हलवाई को, हालांकि हलवाई मिठाई फ्री नहीं देता, बेचता है, फिर भी उसको मिठाई खाने की इच्छा नहीं होगी। आप हलवाई के घर में कोई फंक्शन हो, आप उसके पास मिठाई का डब्बा ले जाएं, तो उसको कैसा लगेगा? कहेगा इससे तो मेरा मन वैसे ही भरा हुआ। किसी भी फल बेचने वाले को आप केले ले जाए उसको गिफ्ट के तौर पे, वो कहेगा ये क्या ले आए, फलों से तो मेरा मन भरा हुआ। तो हमारा जब मन भरा हुआ है तो देवी देवताओं की दुनिया में तो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, देवताओं के खजाने में इच्छा कहाँ से आ जाएगी। इसलिए बाबा ने हमें स्लोगन दिया हुआ है, इच्छा क्या करती है, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। तो हम अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज करेंगे तो हमें इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति होगी। और बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को तो बिल्कुल ही, जो स्वयं सागर के बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं, दूसरों को देने वाले हैं, नाम ही देवता है, उनको इच्छा कहां से हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब अपने स्वमान को आप याद करो। प्यारे बाबा ने हमको हाईएस्ट अथॉरिटी बनाया हुआ है। सारी हम देखने में तो साधारण है क्योंकि हम निर्माण हैं, नम्र हैं, लेकिन अंदर से बाबा ने आपको बताया हुआ है कि ब्राह्मण कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। बाबा कहते किसके बच्चे हैं? बाबा ने मुरली में कहा है कि परसों की मुरली में शायद कहा है, अरे भगवान दो शब्द भी किसी को सुना दे तो स्वर्ग में आ जाता है। पहले हम सुनते थे कि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं है, अविनाशी ज्ञान किसी को भी मिल जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा। पर परसों तो बाबा ने हमारे को बताया क्यों, अरे भगवान किसी को दो शब्द भी सुना देगा तो स्वर्ग में आ जाएगा। बताओ तो जिसको रोज ही भगवान के ज्ञान अमृत का इतना मिलता रहे उसको कोई शक है स्वर्ग में आने से? अब बाबा कहते हैं आपको मैंने हाईएस्ट अथॉरिटी बनाया है, अर्थात हमारा पद क्या है, हमारा पद है देवी देवता। देवी देवताओं के लोक में सारे देवी देवता हैं। देवी देवताओं के लोक में चाहे वो विश्व महाराजन है, चाहे वो रॉयल फैमिली वाले हैं, चाहे वो प्रजा के हैं, कोई भी है, तो देवलोक के रहने वाले, स्वर्ग के रहने वाले, उनको सारे सुख तो स्वर्ग के हैं ही है ना। तो हाईएस्ट का प्रूफ क्या है कि बाबा कहते हैं कि द्वापर के राजा उन डबल ताजदारी राजाओं के मंदिर बना के उनकी पूजा करते हैं। तो वो कौन है? वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण सो देवता। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर आप इस नशे में रहें कि आपको चोटी का सिंबल दिया गया है कि ब्राह्मण मैंने चोटी, चोटी से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं, और आपका नाम लेकर नकली नामधारी ब्राह्मण भी आज कितना उनका मान होता है। कोई भी फंक्शन हो, जीवन में कोई भी घटना हो तो ब्राह्मण को बुलाते हैं कि जी जन्म हुआ ब्राह्मण को बुलाओ, ये हुआ मृत्यु तक भी ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मणों का गुजारा चलता है आपके नाम से। तो बाबा कहते हैं इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी है। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं प्योरिटी की पर्सनैलिटी, सारे सतयुग का आधार, देवलोक का आधार है प्योरिटी। तो दुनिया के अंदर सारी दुनिया में चले जाओ तो प्योरिटी बिल्कुल ही समाप्त हो गई है, और यहाँ प्योरिटी ही प्योरिटी है तो ये लोक दूसरा है। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी, हाईएस्ट पर्सनैलिटी आपके पास है। और बाबा कहते हैं प्योरिटी की पर्सनैलिटी वो तो हो गया हाईएस्ट, ये होलीएस्ट की कितनी वैल्यू है आप देख लो कि कलयुग के अंत तक भी लोग आपकी माला से मरते हैं। आत्माओं, किन आत्माओं की माला से मरते हैं? बाबा कहते हैं सिमरने वालों को पता नहीं, पर वो खुश होते हैं, बहुत पुण्य मानते हैं कि आप माला से मर रहे हैं। भगवान के पर बाबा कहता है मैं खुद वाह बच्चे वाह कहता हूँ। दुनिया के लोग भगवान को प्रेयर ही करते रह जाते हैं और भगवान इसी हॉल में बैठ करके कहते हैं वाह मेरे बच्चे वाह। तो जिसकी भगवान महिमा करे, और किसी के सर्टिफिकेट की उसको जरूरत है? है कि मैं ये डिग्री ले लूं वैल्यू एजुकेशन की या ये? बाबा हंसता है, भारत रत्न भी उसके आगे कुछ नहीं है, विश्व के भगवान के। इसलिए बाबा कहते हैं ये आपकी वैल्यू है। फिर प्राप्ति, आप सारी दुनिया में किसी को भी देख लो, एक जन्म के लिए कोई पुरुषार्थ करेगा तो उसी जन्म के लिए उसको कुछ प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन होगी एक जन्म के लिए अल्पकालिक। किसी ने बहुत पुरुषार्थ किया आईएएस ऑफिसर बन गया एक जन्म के लिए, किसने कोई बिजनेस किया कोई बड़ा सेठ बन गया एक जन्म के लिए। बाबा कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी या प्राप्ति कितनी है? थोड़ा सा संगम युग बाबा के बच्चे बने, लेकिन किसके बने? राजा का बच्चा राजकुमार भी नशे से चलता है। तो आपको बाबा कहता है कि मैं 21 पीढ़ी के लिए इतनी प्राप्ति करा देता हूं कि आपको हर चीज, अर्थात आपकी आयु पूरी, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई ऐसा दृश्य नहीं जो आपके दिल को उदास करे। स्वर्ग, मैंने स्वर्ग, स्वर्ग का सतयुग का नाम सुनते ही आप सतयुग को अपने सामने लाएंगे तो आपको लगेगा वाह कौन सी दुनिया है। और अन्य कोई भी आत्माएं किसी भी धर्म की वहां प्रवेश भी नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं देखो सतयुग और त्रेता में रावण प्रवेश नहीं कर सकता, वहां माया नहीं हो सकती, लेकिन कलयुग घोर कलयुग में भी भगवान प्रवेश कर लेता और संगम युग स्थापित कर लेता है। हम देखो रावण की नगरी में अपनी नगरी बना के बैठे, तो शक्ति नहीं है क्या? आपके ऊपर रावण का असर ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर हम अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और अखुट प्राप्ति को याद रखेंगे तो बताओ कि फिर आपको कोई घटिया चीज की आहुति देने का कोई दुख होगा? आप कहेंगे छूटे, जान छूटे, इससे प्राण छूटे ताकि हम जीवन मुक्त बने। अब बाबा कहते हैं कि हम हमारे चार सब्जेक्ट हैं, हमारी पढ़ाई, आखिरकार सारा हमारा जो प्रारब्ध है उसका आधार हमारी पढ़ाई है। अगर कोई कहे कि हम सतयुग में श्री कृष्ण जी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो क्या होगा? यहाँ भी पढ़ाई, श्री कृष्ण भी तो यही पढ़ाई पढ़ के नंबर वन बने, तो हम भी इस पढ़ाई को पढ़ेंगे तो उनके साथ पढ़ेंगे, थोड़ा पीछे रह जाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं मेरे साथ चलो, अगर हम पीछे रह जाएंगे तो फिर हमें कई डायरेक्ट फ्लाइट होते है कि वाया होती है, तो फिर हमें रास्ते में एक और जगह जाना पड़ेगा अकाउंट सेटल करने, तो क्या फायदा है? इसलिए हमारे ज्ञान की पढ़ाई का, जो ज्ञान का सब्जेक्ट है, उससे हमारी क्या प्राप्ति है? बाबा कहते हैं बच्चों को हो रही है लेकिन स्मृति में नहीं रखते। इसीलिए बाबा ने कहा हुआ है कि लास्ट हमारा, और गीता का भी लास्ट शब्द क्या है? नष्टो मोह और स्मृति लब्धा। जब तक हम स्मृति नहीं रखेंगे तो मोह लगा ही रहेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि एक तरफ हमारा मुंह है एक तरफ हमारी पीठ है। तो अगर आपने मुंह स्वर्ग की तरफ कर लिया तो आपकी पीठ नरक की तरफ आप ही हो जाएगी। स्मृति लब्धा हो गए तो नष्टो मोह आप ही हो जाएंगे। तो कई ब्राह्मण क्या कोशिश करते हैं कि पहले मैं नष्टो मोहा हो जाऊं, ये भी छूट जाए, ये भी छूट जाए, ये भी छूट जाए, फिर मैं स्मृति लब्धा हो जाऊंगा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है। आजकल बाबा क्या कहते हैं कि नीचे से देह में आकर के योग लगाना, भारी चीज को ऊपर फेंकना है, मुश्किल है, कहीं ना कहीं जाके नीचे आ जाएगी। अगर आप ऊपर से, कि जैसे शिव बाबा ऊपर से नीचे आते हैं, हम फरिश्ते हैं, हम आज सुबह ऊपर से नीचे आके कर्तव्य करने के लिए आए हुए हैं, पर हम हैं उस लोक के वासी, तो आपको आसान हो जाएगा। इसलिए ये जो है स्मृति लब्धा पहले हो तो नष्टो मोह आप ही हो जाएगा। तो स्मृति क्या है कि अगर हम ज्ञान की सब्जेक्ट में स्ट्रांग हैं, तो आप देखेंगे आपके अंदर खुशी के फुहारे छूटते रहेंगे। आप ज्ञान के किसी भी पॉइंट को याद करेंगे, आप करेंगे वाह कमाल है। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि आत्मा एक छोटी सी है लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास है, एक छोटी सी आत्मा आंख के लेंस के द्वारा पूरा धरती से आकाश तक देख सकती है, एक पूरे वृक्ष को देख सकती है, इतने बड़े शरीर को देख सकती है। जैसे वो शीशा होता है, छोटी चीज बड़ी नजर आती, पर ये तो जबरदस्त है, एक छोटी सी। तो ये पॉइंट सुनकर के ब्राह्मणों को खुशी तो होती है ना, अरे दुनिया में इस बात को कोई नहीं जानता, बाबा हमें क्या नए से नई बात बताता है। इसलिए ज्ञान की पॉइंट आपको अति खुशी के फुहारे छुटाने वाली है और यही जीवन मुक्त बनाने वाली है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप ज्ञान की पॉइंट यूज करेंगे तो फटाफट आपको बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो ज्ञान हमको जीवन मुक्त करने वाला है। मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, दुनिया वाला कहेगा अरे आप प्रॉब्लम आ गई, अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। हम क्या कहेंगे, अरे आई है, जरूर जाएगी, जो चीज आई है, गेस्ट आया है तो जाएगा ना। इसी प्रकार से फिर हम कहेंगे अरे ये तो कलप पहले भी आई थी, तो कलप पहले चली गई थी तभी तो हम यहाँ है, तो फिर हम कहेंगे अरे बाबा हमारे साथ है, तो इसलिए उड़ जाएगा। तब बाबा कहते हैं कि ज्ञान का स्मरण करने से, जैसे कहा गया कि विष्णु जी शेष नाक की सैया पर सोए हुए हैं, पांच नाक के सिर उनको छतर छाया कर रहे हैं। कृष्ण जी के लिए भी यही दिखाते हैं, जमुना पार करे तो उसकी छतरी बने हुए हैं और वो मस्त अपनी खुशी में मस्त है। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है योग का। अब योग से क्या होता है, बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल सब्जेक्ट हमारा योग का है, और हम योग रोज करते हैं तो हमारे अंदर बहुत शक्ति जमा है, लेकिन हम अपने आप को साधारण गिन के साधारण काम करने लग जाते हैं। जैसे कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति ये भूल जाए मेरे अंदर शक्ति है, वो साधारण काम करने लग जाए तो क्या होगा। मान लो किसी ने आपको हवाई जहाज गिफ्ट में दे दिया, ये लीजिए आपको एक एरोप्लेन, छोटा सा एरोप्लेन आपके घर के बाहर रख देते हैं, और आप उस एरोप्लेन में सब्जी लेने चले गए, तो लोग पहले तो कहेंगे भी बड़ा वंडरफुल व्यक्ति है, एरोप्लेन में बच्चों को स्कूल छोड़ने चले गए। एक दो दिन तो लोग हैरान होंगे, चौथे दिन क्या कहेंगे कि बड़ा अकलमंद व्यक्ति है, ऐसे कहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते मैंने आपको इतनी शक्तियां दी, योग हर काम में जरा सा होता है योग लगाओ। बाबा कहते योग की शक्ति इतनी पावरफुल है कि ब्रह्मा बाबा के योग को आप देखे, आत्माओं का आवाहन कर लेते थे, आत्माओं को महसूस होता था। अनेक कहानियां हमने इस बाबा को हमने देखा था, हम मधुबन आते तो पहले ही बाबा ने उनका आवाहन किया हुआ है। सारे विदेशियों का आवाहन ब्रह्मा बाबा ने व्यक्त होकर किया, तो देखो आज विदेशों में कितने सेंटर है, प्रूफ है ना। तो इसलिए इतनी शानदार शक्ति हमारे पास और हमारे पास जमा है, लेकिन हम उसको रियलाइज ना करके जैसे कोई हीरे को चने के भाव यूज कर रहा हो, उसी हमारा हिसाब है। योग की शक्ति से। बाबा कहते हैं आपका संकल्प और कर्म में समानता आती है, संकल्प सिद्धि होती है। अब देवताएं योग के आधार पर बनते हैं तो देवताओं में और साधारण मनुष्यों में क्या फर्क है? देवता एक संकल्प करता है वो सिद्ध हो जाता है, अर्थात जो होना होता है उसका ही संकल्प देवता करता है, इसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। और ये एकाग्रता और अंतर्मुखता से आती है। दुनिया के अंदर भी कोई सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं वो भी एकाग्रता से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो अर्थात हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि योग बल से हमें बहुत सोचना ना पड़े। कहते ना आज गीत भी यही था, हमें डरने की क्या बात है, ईश्वर हमारे साथ है, फिक्रात की क्या बात है। तो जब हम गीत गाते हैं तो फिर हमें भय होना चाहिए? भय तो शरीर के छूटने का होता है, हम तो आत्मा है। हमें कोई चिंता होनी चाहिए? अरे कल्प, आज भी बाबा ने कहा है कि जो कल्प को ड्रामा को याद रखता है उसको चिंता रोना फिक्र होना नहीं चाहिए। इसलिए संकल्प सिद्धि। तीसरा हमारा सब्जेक्ट क्या है? तीसरा हमारा सब्जेक्ट है दैवी गुणों की धारणा। अब दैवी गुणों से क्या प्राप्ति होती है? तो बाबा कहते हैं दैवी गुण जैसे खुशबू होता है, ये रूहानी खुशबू है, ये रूहानी संपन्नता है जिससे हम सदा संतुष्ट रहते हैं। दैवी गुण धारण करने वाला सदा संतुष्ट रहेगा और अवगुण वाला सदा असंतुष्ट रहेगा। इसलिए हम संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। तो जब आप दूसरों को संतुष्ट करेंगे तो उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा कि देखो मेरे को ये था, मेरे को इसने रास्ता दिखा दिया, मेरे दुख को दूर कर दिया। जैसे बैड स्मेल को खुशबू दूर कर देती है, ऐसे दुनिया के अंदर जो इस प्रकार की दुख दर्द अशांति चिंता ये सब है, संतुष्टता उसको दूर कर देती है। संतुष्टता क्या कहती है? असंतुष्ट कहता आइए आइए, और संतुष्ट क्या कहता है? जाइए जाइए, तो छुट्टी हो गई। संतुष्ट को कोई कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता। जैसे सागर संतुष्ट है, सागर को पानी चाहिए कभी नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं ये आपका संतुष्टता है। और चौथा सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत ही बढ़िया है, हम सबको अनुभव है। चौथा सब्जेक्ट हमारा सेवा का। तो बाबा कहते हैं सेवा, रूहानी सेवा, सच्ची सेवा, जिसमें वो नाम शान मान नहीं है, जिसमें वो पुराने संस्कार स्वभाव आके विघ्न नहीं डालते हैं, जिसमें हम साधनों के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो सेवा हमको अथक बनाती है। अब आप कहते हैं जानकी दादी अथक हैं, नहीं तो आप सोचो शरीर के तौर पे 103 वर्ष का व्यक्ति तो हूं हिलता रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। और जानकी दादी आज यहाँ है कल वहां है, दिल्ली में सेंटर पर आती है, रात को समझो 9:30 बजे आ गई, तो सबको इकट्ठे करके रू रिहान शुरू कर देती हैं, करी जाती हैं। तो बहन भाई खुद थके हुए होते तो कहते दादी आप थके हुए होंगे ना, आप रेस्ट करो। अंदर से होता कि हम खुद थके हुए हैं, हम जाके रेस्ट करें। अब बताओ तो क्या दादी को पता नहीं लगता? यहाँ बैठती है फूल की तरह, वहां उठ जाती। तो ये जो अथक बना है ये तो आपके आगे हैं ब्रह्मा बाबा, उसका तो शास्त्रों में गायन है, दधीचि ऋषि अथक सेवाधारी। आप कभी भी देख लो, आप सेवा करोगे आप थकोगे नहीं। लोग कहेंगे अरे भाई आपके भोजन का टाइम हो गया, आप कहेंगे नहीं नहीं ठीक है, कहेंगे अरे तो रात पड़ गई, नहीं नहीं ठीक है। वो कौन सी ताकत है जो आपको अथक बनाती है? तो निर्माणता, क्योंकि सेवा करने वाले को अभिमान नहीं आ सकता, अगर होगा भी तो सोचेगा मैं अभिमान दूसरा क्या कहेगा, अगर उसके अंदर क्रोध है तो सोचेगा मैं इसको क्रोध से सेवा करूंगा तो ये क्या कहेगा, तो उसको उसके कारण से वो निर्माण हो जाता है। तब बाबा कहते हैं निर्माण ही निर्माण कर सकता है। तो इसलिए अथक सेवाधारी भी अथक पना आ जाए आपके अंदर, तो इसका मतलब शरीर का भान नहीं है। थकता कौन है आपके ख्याल में? आत्मा थकती है? मान लो किसी दिन रात के 1 बजे तक आप कुछ करते रहे, आप सो गए, फिर क्या होगा? आपकी रोज की आदत के अनुसार आप सुबह अमृत वेले अपने आप आपकी आंख खुल जाएगी, क्योंकि आप रोज लगातार हर वर्षों तक सुबह उठते रहे हो, तो नेचुरली जो स्वभाव होगा आपकी आंख खुल जाएगी। फिर क्या होगा? फिर आप कहेंगे रात को मैं 1 बजे सोया था ना, इसलिए मैं थका हुआ हूं। अब बताओ, आंख तो खुल गई, लेकिन ये जो संकल्प आया, ये बॉडी कॉन्शियस का आया, अगर आपको उसी समय सुबह जब आप अमृत वेले उठते हैं कोई जरूरी काम है, कोई ट्रेन पकड़नी है या कुछ करना है, तो आप जाग जाओगे। कोई किसी को कह दे, बहुत आलसी व्यक्ति को भी कह दे कि तेरी लॉटरी निकली है 1 करोड़ की और सुबह 4 बजे तुम्हें प्राइज मिलना है, वो सारी रात में सोएगा, क्योंकि लालच है। तो आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है, आप देखेंगे वो शक्ति यूज होती है, पर कभी कभी होती है। मान लो कोई पेशेंट है, बहुत बेचारा बीमार है, डॉक्टर ने उसको ICU में रखा हुआ है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, उसके हार्ट रेट, पल्स रेट, सब कुछ की मशीनें लगी हुई हैं, किसी को अंदर आने का अलाउड नहीं है, आवाज करने का अलाउड नहीं है, ऐसे करता है तो हाय, ऐसे करता है तो हाय। मान लो उसको कोई कह दे कि तेरे बेड के नीचे टाइम बॉम्ब रखा हुआ है जो आधे मिनट में फटने वाला है, तो पेशेंट डॉक्टर को धक्का देके सड़क पर आ जाएगा, वो ताकत कहां से आई? इसलिए ताकत है। आप रात को लेटे हुए हैं, सुबह अमृत वेले बहुत आलस में पड़े हैं, आपके बेड के नीचे कोबरा सांप आ जाए, अच्छा तो फिर आप क्या करेंगे? सोए रहेंगे? अरे भाई सोए रहो। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह की कहानी यही है कि बादशाह और फिकर, वंस देयर अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग एंड ही वाज पुअर, जैसे कोई ऐसे कहानी बनाता है। बेफिक्र बादशाह, एक बादशाह सलामत सारा दिन अपनी राजधानी में चक्कर लगाते रहे, फिर वो जंगल में चले गए शिकार करने, शाम को थके थकाए आए और दरबान को बोले कि देखो भाई मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सीधा जाके सोना चाहता हूं। तो दरबान कहेगा हजूर जहां पना आइए, आपका सोने का कक्ष तैयार है, आप उसमें प्रवेश करिए। और जब वो उस सोने वाले कमरे में जाना लगे तो उसके कान में दरबान कहे हजूर आज सुबह आपके कमरे में एक सांप देखा गया था, हमने बहुत ढूंढा मिला नहीं, पर आप तो बादशाह सलामत हैं, सारी आपकी रैयत है, सांप आपका क्या कर सकता है, आप आराम से सो जाइए। अब क्या होगा? तो बादशाह सोएगा, दरबान अच्छी, अब बादशाह दरबान को ये भी नहीं कह सकता कि मैं डरता हूं, तो क्या करे? वो कहेगा हजूर आप चैन से सो जाइए। अब देखिए बादशाह का है तो बादशाह, इधर देखा उसको हर जगह सांप ही सांप नजर आएगा। इसलिए अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो हमारे अंदर आता है ना, शक्ति नहीं है, शक्ति है। अब बाबा कहते हैं उसको आप प्रकट करो। एक बार एक अंग्रेज विदेश से आया, उसने कहा मैं भारत का गांव, असली गांव देखना चाहता हूं। एक तो गवर्नमेंट ने गांव बनाए होते हैं ना बड़े सजा, टूरिस्ट को दिखाते, उसने कहा मैं असली गांव देखना चाहता हूं। तो कोई व्यक्ति उसको असली गांव में ले गया और जैसे होता है वहां पर गोबर के उपले लगे हुए थे दीवार पर, उसने कहा भैंस कहां कैसे इस पर चढ़ गई, ऐसे सवाल करने लगे। उसको जलेबी खिलाई गई तो कहा इसमें चीनी का सेंटर होती है। अच्छा, करते करते उसका टाइम ज्यादा लग गया और उसको जाके फ्लाइट पकड़नी थी, ट्रेन पकड़नी थी, तो उसने कहा अरे ये तो आधा घंटा रह गया और 45 मिनट चाहिए मुझे गांव में जाने से, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो उन्होंने कहा जी गांव का तो एक ही रास्ता होता है, ये पगडंडी है और कुछ नहीं है। तो वो चिंता में पड़ गया। तो एक बच्चा खड़ा था, उसने कहा वो कुत्ता बैठा उसको पत्थर मार दो, 25 मिनट में पहुंच जाओगे। अब आप सोचो, इसी प्रकार से अगर आपको नींद आने लगे, बड़ी दीदी कहती थी नींद आने लगे तो सोचो मेरे बेड पे सांप पड़ा, आप फटाफट नीचे आ जाओ, नीचे क्या डायमंड हॉल में आ जाओगे। इसलिए आत्मा को आजकल बाबा यही कहता है अपनी शक्तियों को इमर्ज करो, और इमर्ज करेंगे तो आपको ऐसे फील होगा कि मास्टर सिर्फ सर्वशक्तिवान के बच्चे। अब कहते हैं भगत तो कह सकते हैं, भगत कहते कुछ है करते कुछ है, ये प्रभु सब आपका ही है। प्रभु ने एक बच्चा ले लिया तो कहेंगे मेरा बच्चा क्यों ले लिया, जब देंगे तो प्रभु जी आपका दिया। तो बाबा कहते बच्चे ना ऐसे करें, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं पर हम डरते हैं, कोई शेर कहे मैं गीदड़ हूं तो क्या होगा। इसलिए बाबा कहते अपनी शक्तियों को इमर्ज रखो, जागृत रहोगे तो आपको ये जो आहुतियां हमने बताई ये मुसीबतें हैं, इसको छुटकारा पाना ही अच्छा है। तो इन प्रकार की मुसीबतों की अंतिम आहुति देनी है। एक शब्द में कहें तो हमें अपने देह भान की अंतिम आहुति देनी है। अब हमें फरिश्ता रूप में रहना है, फरिश्ता रूप से ही हम देवता रूप बनेंगे। ओम शांति।
Oh।